699 का अगर बिकता है तो उसमें 40 निकालें तो 660 का वो घर उनको वो मिलेगा, जो के बैंक के जो मॉर्गेज है वही 8 लाख है। 6,40,000 देने के, 60 लाख देने के बाद आप इमेजिन कीजिएगा कि कितना लॉस है। दिस इज व्हाट द लाइफ इज। लेट मी टेक यू टू शिराज शफीक। आई नो शिराज शफीक सिंस ही स्टार्टेड, ही गॉट इन टू द मॉर्गेज बिजनेस। आई पर्सनली डेल्ट विद हिम, नेवर हैड एनी स्लीपलेस नाइट टूवर्ड्स द एंड। मॉर्गेज अगर आपने करवाना है अपने घर की, रीफाइनेंसिंग अगर आप करवाना चाहते हैं, और आप एक दफा बात कीजिएगा, ही डील्स विद ए लेंडर्स, बी लेंडर्स, सी लेंडर्स। अगर आपको एक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए उसके लिए, अगर आपने कंस्ट्रक्शन लोन लेना है उसके लिए, शिराज शफीक ए वेरी रिलायबल नेम। नंबर उनका 2892426286, 2842626286। मैं आपको उनका सेल फोन दे रही हूँ, 2892426286। इनके ऑफिस ब्रैम्पटन में, मिसिसागा में, लंदन ओंटेरियो में भी इनके ऑफिस हैं, बट अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस ही कैन कम, ही कैन मीट यू, इट्स एडिशनल फैक्टर। शिराज मेरे साथ हैं। शिराज अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू?
वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्लाह तआला का शुक्र है जी, आप सब ठीक हैं?
अल्लाह का बहुत।
आपकी आवाज भी बेहतर लग रही है, आपकी तबीयत भी बेहतर लग रही है, कुछ स्पार्क लग रहा है आपके साउंड के अंदर।
नहीं नहीं, आज क्योंकि मैं जिंदगी में अल्लाह तबारक व तआला से, आज मैंने प्रोग्राम भी शुरू किया था कि मैं और आप जब अल्लाह तआला से हमेशा कहते हैं, अल्लाह ताला रिस्क में वुसत देना, ये चार चीजों पर काउंट करता है। रिस्क से में वुसत से मुराद है कि अल्लाह ताला आपको औलाद बेहतरीन दे सकता है, फर्मा बरदार औलाद में भी ये दुआ चेंज हो सकती है, आपकी इज्जत, आपके दोस्त अहबाब, आपके आना जाना, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि अगर इफ यू हैव फ्रेंड्स दे कम टू आवर होम, दे मीट अस, हमारे दस्तरखान पे वो शामिल हो सकते हैं। अल्लाह ताला मेरा आपका दस्तरखान भी वसी कर सकता है। अल्लाह ताला इस वुसत में आपको वो मोरे के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकता है जो किसी दूसरे को एम्पावर कर सके। बहुत प्यारा मुझे लगा, मुझे एक बहुत प्यारा बेटा है जिसने आज ये इसके बारे में एक्सप्लेन की। रिसेंटली केम फ्रॉम सऊदी अरेबिया, तो उसने मुझे इस बात पे एक्सप्लेन किया। और मैं एक इस मौके पे आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने कभी किसी का कोई पैसा देना है तो खुदारा आप यकीन कीजिएगा, ये रिस्क देने वाली सिर्फ अल्लाह की जात है, ना तो मेरा आपका झूठ फ्रॉड हमारी चीजों पे पर्दा डा बरकत दे सकता है, नो, ना कोई और चीज अल्लाह की तरफ से हो, और सिर्फ अल्लाह की जात दे सकती है, दैट्स इट पीरियड। शिराज यकीनन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम इन आवर लाइफ्स, और मुझे, मैं बहुत एहसानमंद हूं आपकी स्पॉन्सरशिप की भी, आपकी सपोर्ट की भी, मगर मुझे एहसास है कि बाहर मॉर्गेज का बिजनेसेस भी अच्छे नहीं, मगर वो लोग जो बिजनेस के लिहाज से लोन लेना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि एडिशनल इनकम हमारी बेसमेंट की तरफ से आ जाए, अगर बेसमेंट के बनाने के लोन्स हैं, आई होप कि बेहतरीन सर्विसेज आप देंगे मेरे तमाम लिसनर्स को, दे आर माई फैमिली। प्लीज डू लेट अस नो अबाउट योर services and why people should contact you. मैंने सारे सवाल एक जगह पे कर दिए आपको।
जी अरफा जी, अरफा जी हमारे वो बहन भाई जो के सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या फिर जो जिनकी मॉर्गेज प्राइवेट लैंडर्स से हैं, बी लैंडर्स से हैं, मैं यहाँ पे ये बता सकती हूँ, क्योंकि आजकल हमें डेली बेसिस पे ना कॉल्स रिसीव हो रही हैं, क्योंकि हम लोग स्टक हुए हैं प्राइवेट साइड पे या बी लैंडर्स पे स्टक हुए हुए हैं, लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो हमारी जो मॉर्गेज नहीं हो पा रही, हमारी क्लोजिंग हमारे सर पे है, तो मैं थोड़ा सा इनके बारे में बताता चलूं। पहले देखिए, हमारे वो बहन भाई जो सेल्फ एम्प्लॉयड है और 2 साल या 2 साल से ज्यादा से अपना बिजनेस कर रहे हैं ना, बेसिकली की रिक्वायरमेंट क्या होती है, 2 साल या 2 साल से ज्यादा, वो बेसिकली इन रूल्स अंदर उनके ऊपर ये रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। अगर आप लेस देन 2 ईयर्स हैं तो आपका आर्टिकल कम है तो बैंक आपकी इनकम को एक्सेप्ट नहीं करता। 2 साल का मतलब ये होता है कि बैंक ने आपकी एवरेज इनकम निकालनी है उन 2 सालों की, वो इस इनकम को लेके आगे आपकी क्वालिफिकेशन चेक करते हैं। अरफा जी, जितने भी हमारे बहन भाई हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, इनकम तो ये बेसिकली बड़ी अच्छी बनाते हैं, लेकिन जब पर्सनल टैक्स रिटर्न फाइल करने की बारी आती है CRA के पास, ये अपनी उस इनकम के अंदर बहुत सारे एक्सपेंस डाल के, डिडक्शंस डाल के अपनी इनकम बहुत कम शो करते हैं। यही वजह है कि जब ये बैंक के पास जाते हैं तो बैंक इनकी मॉर्गेज करने से इनकार कर देता है। मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ अपने लिसनर्स के लिए, सुनने वालों के लिए, कि हमारे साथ अकाल मोर्चे पर ऐसे लेंडर काम करते हैं जो स्टेटेड इनकम, स्टेटेड इनकम कौन सी है, जो आपने नोटिस ऑफ सेटलमेंट के ऊपर शो की हुई है, उसके ऊपर बगैर किसी ट्रेडिशनल इनकम की वेरिफिकेशन किए आपकी जो मॉर्गेज है वो बड़े ही अच्छे इंटरेस्ट रेट के ऊपर करके दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि सारे जो बैंक हैं वो आजकल सेल्फ एम्प्लॉयड की मॉर्गेज करने में जो ना इतने कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। यही वजह है आपा जी कि जब हमारे बहन भाई हमारे पास आते हैं ना तो ये काफी ज्यादा परेशान हुए हुए हैं, स्टक हुए हुए हैं कि जी क्लोजिंग हमारे सर पे आ गई है और हमारी मॉर्गेज नहीं हुई। देखो जब आपको पता था कि आपकी मॉर्गेज आ रही है, आपने ब्रोकर को फाइल दी हुई है, तो उसका फॉलोअप भी आपने ही करना था। अगर आपका ब्रोकर आपकी फाइल के ऊपर काम नहीं कर रहा, आपको लास्ट मोमेंट के ऊपर लेके जा रहा है, तो इसका नुकसान आपको ही होना है, क्योंकि लास्ट मोमेंट के ऊपर अगर वो आपको ना कह देगा तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगी, मजबूरन आपको अपनी डील जिस तरह से आप लोगों के साथ आजकल हो रहा है आपको प्राइवेट लेंडर से ही क्लोज करवाना पड़ेगी। अगर आप क्लोज नहीं करवाओगे तो जो है ना ऑब्वियसली अगर बिल्डर है तो बिल्डर आपको तो आपके ऊपर केस करेगा, अगर आपने कोई रीसेल में ली हुई है तो सेलर आपके ऊपर केस करेगा। तो दोनों साइडों में ट्रबल आपके लिए आनी है, ब्रोकर का कुछ नहीं जाना, उसने तो कह दिया जी कि कुछ नहीं हो सकता लास्ट मोमेंट के ऊपर जी कि आपके साथ ये मसला बन गया या वो मसला बन गया। तो मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों की क्लोजिंग आ रही है तो आप बिफोर टाइम अपनी उस क्लोजिंग का अरेंजमेंट करें। सभी को पता है कि आजकल अप्रेजल भी कम आ रही है, तो फिर आप लास्ट मोमेंट का वेट क्यों कर रहे हैं, किस चीज का आपको है कि जी लास्ट मोमेंट के ऊपर कोई सरप्राइज नहीं होगा। अगर आप लोगों की क्लोजिंग आ रही है तो मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि लास्ट मोमेंट तक का वेट ना करें, 2-3 महीने पहले अपनी फाइल के ऊपर काम शुरू करें। अगर कुछ होता है, कोई अप्रेजल काम आती है, तो आपके पास टाइम है, आप अपने फंड्स को मैनेज कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो कहीं ना कहीं से। लास्ट डे के ऊपर अगर आपको 60,000 या 70,000 या 100,000 अरेंज करना पड़ जाएगा तो कहां से करके लेके आएंगे। दूसरी बात ये है हमारे वो बहन भाई जो लास्ट मोमेंट तक वेट कर रहे हैं, देखो उनको जब क्लोजिंग करवानी पड़ती है ना प्राइवेट लेंडर से, वहां पे उनको लैंडिंग फी भी पे करनी पड़ती है, वहां पे उनको इंटरेस्ट रेट भी हाई मिलता है। सो प्लीज अगर आप लोगों की क्लोजिंग आ रही है तो आप बिफोर टाइम अपनी मॉर्गेज का अरेंज करें। इस बारे में डिस्कस करने के लिए आप कॉल कर सकते हो, मेरा नंबर नोट कर लो जी, शिराज शफीक अकाल मॉर्गेज, 416-502-8000, और मेरा सेल फोन नंबर है 2892426286। दूसरी बात यह है हमारे पास आरफा जी 90 लेंडर्स की बकेट मौजूद है। हमारे पास जब हमारे वैन भाई आते हैं तो हम इस बकेट के अंदर से उनके लिए जो अच्छी प्रोडक्ट है बेसिकली वो सिलेक्ट करते हैं जिससे उनको फायदा होता है। अगर उनको फायदा नहीं होगा तो वो दोबारा कभी भी हमारे पास नहीं आएंगे। हमारे वो बहन भाई जो अपनी फर्स्ट मॉर्गेज को किसी भी वजह से ब्रेक नहीं करना चाहते, चाहे कि जो हमने कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर ली हुई है या जब हमने ली थी उस वक्त हमारी इनकम थी, पर इस वक्त हमारी जॉब भी नहीं है, हमारे पास इनकम भी नहीं है और इंटरेस्ट रेट भी हमें हाई मिल रहा है, तो हम लोग अपनी फर्स्ट मॉर्गेज को कीप करना चाह रहे हैं और कोई ऐसा सोल्यूशन हमें बता दिया जाए कि हमें जो है घर के ऊपर होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट बन जाए जिससे हम लोग अपनी बेसमेंट बना सके, उसको रेनोवेट कर सके। तो हमारे पास ऐसे लेंडर भी मौजूद हैं जो विदाउट इनकम की वेरिफिकेशन के, विदाउट इनकम के डॉक्यूमेंट्स के आपके जो होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट है, जो सेकंड मॉर्गेज है, बगैर आपकी फर्स्ट मॉर्गेज को ब्रेक किए वो आपको बना के दे सकते हैं अच्छे एसेट के ऊपर। आप इन पैसों को किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हैं, बेसमेंट बनाने के लिए, अपने बच्चों की ट्यूशन फी के लिए, अपने बच्चों की कोई भी आप यूनिवर्सिटी वगैरह करनी है, या अपने हाई डेट्स को, क्रेडिट कार्ड्स को आपने कंसोलिडेट करके उनको लो इंटरेस्ट पर लेके आना, उसके लिए तो आप इन पैसों को किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हैं। और ये होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट ऐसे ही काम करती है जैसे आपके दूसरी लाइन ऑफ क्रेडिट काम करती है, जितनी इस्तेमाल करेंगे उतनी के ऊपर ही आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, रिमेनिंग के ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा। इसलिए इस प्रोडक्ट के बारे में भी अगर किसी को भी, मेरे बहन भाई को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं, नंबर नोट कर लो जी, शिराज शफीक अकाल मॉर्गेज, 416-502-8000, और मेरा सेल फोन नंबर है 2892426286। हमारे पास आरफा जी एक प्रोडक्ट और भी है, हमारे वो बहन भाई जो कि 60+ एज के हो गए हैं, 65 पे चले गए हैं, अब उनके पास इनकम कोई नहीं है और उन्होंने घर लेके देने हैं अपने बच्चों को या उनके बच्चों की हेल्प करनी है उन्होंने, तो ऑब्वियसली वो रिवर्स मॉर्गेज ले सकते हैं। रिवर्स मॉर्गेज का मतलब ये है ये ऐसे ही काम करती है जैसे स्टेप मॉर्गेज काम करती है, जैसे स्कोशिया बैंक वगैरह की है। आपने कोई मंथली पे नहीं करनी, दोनों ऑप्शन हैं, आप मंथली उसका इंटरेस्ट भी पे कर सकते हैं और विदाउट पेइंग भी उसको ले सकते हैं, तो दोनों ऑप्शन उसमें मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि जी रिवर्स मॉर्गेज अगर मिलियन डॉलर का घर है तो आप उसके ऊपर अपनी इक्विटी वगैरह निकालना चाह रहे हैं, रिवर्स मॉर्गेज लेना चाह रहे हैं, तो आप लेके तो बड़े आराम से अपने बच्चों को गिफ्ट कर सकते हैं, वो उससे अपना घर बाय कर सकते हैं, डाउन पेमेंट में यूज कर सकते हैं। जिस तरह से आजकल की मार्केट चल रही है अब उससे वो फायदा उठा सकते हैं। ये ना सोचें कि जी आगे क्या होगा, इस वक्त मार्केट अच्छी है। देखिए जब भी पैसे होंगे आपके पास, ऑब्वियसली अगर आपने घर लेना है वही टाइम आपके लिए घर लेने का है,
बहुत शुक्रिया।
घर ले सकते हैं अच्छी प्राइस के अंदर ले सकते हैं। इस बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कॉल कर सकते हैं, नंबर नोट कर लेंगे शिराज शफी का कॉल मॉर्गेज 416-502-8000 और सेल नंबर है
2896286। एरिया कोड 2896286 इनका सेल है, मगर ऑफिस का नंबर 4165028000। शिराज आपका बहुत शुक्रिया।
थैंक यू जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।
वेलकम बैक।
एक नवंबर नू आ रही है दिवाली, तुसी भी पटाका.com से आओ, बेस्ट क्वालिटी दे पटाके होलसेल प्राइस से ले जाओ, ग्रोसरी स्टोर, कन्वीनियंस स्टोर, कैनेडा दे विच किते भी। अगर तुसी भी पटाकियां दे नाल अपना प्रॉफिट दुगना करना चाहते हो ते आज ही कॉल करो पटाका.com ते 416-828-6008-416-828-6008
जो ले गया सो ले गया, जो रह गया सो रह गया। 40 साल पुराना सोटी फर्नीचर सदा के लिए बंद होने जा रहा है। $90 का सिंगल बेड, $100 का डबल बेड, $100 का ये डबल बेड, $249 का बंक बेड, $99 की ये ग्लास कॉफी टेबल, $100 की ये ब्यूटीफुल मॉडर्न कॉफी टेबल, $130 की ये कॉफी टेबल, $120 में टीवी ट्रॉली विद वर्टिकल स्टोरेज, $499 में मॉडर्न क्वीन साइज बेड विद स्टोरेज और $199 बिल्कुल फ्री, $499 में मेड इन मलेशिया डाइनिंग टेबल सेट विद 6 चेयर सॉलिड वुड में, $599 में एक्सटेंडेबल डाइनिंग टेबल विद 6 चेयर, $1199 का हाई एंड लग्जरी सोफा सेट 6 सीटर जिसमें ऑप्शन है प्रिंटेड चेयर की और नॉर्मल चेयर की, $1299 में ये मॉडर्न क्वीन साइज बेडरूम सेट 8 पीस जिसमें है ड्रेसर, चेस्ट, दो नाइट स्टैंड और विद स्टोरेज। ये सारा का सारा 2 मिलियन प्लस का ब्रांड न्यू फर्नीचर क्लोजिंग सेल डाउन पे है। आज फिर सारे सोटी फर्नीचर ब्रैम्पटन और इनको सपोर्ट करो, इनका साथ दो ताकि सारा फर्नीचर इनका सेल हो सके और आपको फायदा हो सके।
पेठा लड्डू बर्फी जलेबी कलाकंद मटके दी कुल्फी जो खावे रह जे डंग।
क्यों आ गया ना मुझ पानी, ता फिर तुसी भी बनाओ अपनिया खुशियां स्वीट महल दे नाल, जो तुहाडे स्वाद अते सेहत दोवां दा ख्याल रखदे ने।
मुंह मिठा करा दे चन्न वे के खुशियां ने आईया, के खुशियां ने आईया, लेना लगिया स्वीट महल ते खरीद लो मिठाइया, खरीद लो मिठाइया।
इस दिवाली थोड़ा खाओ पर वधिया खाओ, मिठाइया दे नाल ना ड्राई फ्रूट से गिफ्ट बॉक्सेस ले जाना ना भूलियो। आज ही पहुंचो स्वीट महल इन रेक्सडेल 416-679-9191।
हैप्पी दिवाली।
मेरी पूरे साल की सेविंग $400 हुई है,
मेरी सेविंग $350,
मेरी सेविंग सिर्फ $100
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है, मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुड़ सिखाओ ना।
भाई बात सादा सी है, हमारे पास 2 गाड़ियां और 1 घर है और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर की इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह 647-290-3773
लाउडी आ गया ओही टाइम जिसका सारे GTA नू सारा साल इंतजार रहंदा है। दुनिया दा सब तो वड्डा इंडोर मिठाई मेला 15 अक्टूबर तो 21 अक्टूबर तक समोसा स्वीट फैक्ट्री दी तीनों लोकेशंस ते कैनेडा मेड शुद्ध खोई दिया फ्रेश अते बेस्ट क्वालिटी दी मिठाइयां, गिफ्ट बास्केट, समोसास, बर्फी, पटाखे अते सब कुछ अंडर वन रूफ। दुनिया दा सब तो वड्डा इंडोर मिठाई मेला ओनली एट समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री 1850 एल्विन रोड इन ओटोबिको। कॉल एट 416-2 1311-65
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com। QTL बिकॉज वी केयर।
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੜਾਈ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੜਾਈ ਖਾਣ ਦਾ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ?
ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਕੜਾਈ 804।
ਜੀ ਹਾਂ, ਕੜਾਈ 804 ਵੀਕਐਂਡ ਕੇ ਪਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹਲਵਾ ਪੂਰੀ ਪਲੇਟਰ ਔਰ ਪਰਾਠੇ ਕਾ ਪਲੇਟਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਇਲਾਵਾ ਬੀਫ ਨਹਾਰੀ, ਯਖਨੀ ਵਾਲਾ ਪਲਾਓ, ਬੀਫ ਪਾਏ ਭਜੇਗੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਚੰਦਨ ਕਬਾਬ, ਚਿਕਨ ਟਿੱਕਾ, ਤਾਜ਼ਾ ਹੈਂਡ ਸਲੋਟਡ ਮੀਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਘਰ ਕੇ ਮਸਾਲੇ ਜ਼ਾਇਕੇਦਾਰ, ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਓ।
ਲੋਕ ਬਣਾਤੇ ਹੈ ਖਾਨੇ, हम बनाते हैं रिश्ते, चाहे डाइनिंग करना हो, टेक आउट या कैटरिंग के लिए आज ही रابطہ करें। 905-417-0804, 905-417-0804। हमारा एड्रेस है 3604 मेजर मैकेंसी ड्राइव, वेस्ट वॉन, परदेश में देश।
जी साहब, प्रोग्राम में आप तमाम को खुश आमदेद। अभी जनाब एम्बेसडर करामत लोहरी साहब भी, एक्स एम्बेसडर करामत लोहरी साहब आप तशरीफ फरमाए, उनसे भी मैं आपकी बात करवाती हूँ, मगर एक स्पॉन्सर से मुलाकात कराऊं। आज एक और बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक लेके जाऊंगी। हमारे एम्बेसडर जनाब मंसूर अहमद खान साहब जो अफगानिस्तान में तैनात हैं सन 2020 से, मंसूर अहमद खान, पाकिस्तानी डिप्लोमेट हू इज करंटली सर्विंग इन एम्बेसडर अफगानिस्तान सिंस जून 2020 से, और इसके अलावा एम्बेसडर ऑफ ऑस्ट्रिया में भी रहे जून 2018 से अगस्त 2020 तक, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान इन यूनाइटेड नेशंस में भी आपने सर्विस दी, हमारे साथ रहे। इट वॉज वेरी इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगु जो उनके साथ हुई। आपको पता ही होगा कि हमारे जनरल साहब जब अफगान तालिबान ने अपना चार्ज लिया था तो कॉफी के कप के साथ जो हमारे ISI के जो जनरल साहब वहां पे मौजूद थे, तो ही वॉज दी एम्बेसडर, एंड बाकायदा आप तस्वीर में उनको देख भी सकते हैं। तो आज वो हमारे साथ, जनरल फैज ने जब तहरीक तालिबान ने टेक ओवर किया था तो वहां मौजूद थे, तो यही जनरल जो एम्बेसडर मंसूर अहमद खान साहब हैं ये वहां उनके साथ खड़े हुए आपको नजर आ रहे हैं। जो लोग टेलीविजन देख रहे हैं तो जनरल साहब की लेफ्ट साइड पे चाय के कप के सामने ये हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन इस वक्त जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सूरत हाल, यहां पे मैं ये कहना चाहती हूं कि दुनिया में कोई भी मुलाकात, कोई भी बातचीत कॉन्वर्सेशन के बगैर हल नहीं हो सकती, नेवर। अगर अमेरिका तालिबान के साथ बैठ के मुज़ाकरात कर सकता है एक तीसरे मुल्क में, मिडल ईस्ट में, तो पाकिस्तान भी मुज़ाकरात कर सकता है। ऑफ कोर्स देयर इज अ सॉल्यूशन, बट अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तानियों में से बहुत से लोग जो पाकिस्तान की इंटरनल भी अनरेस्ट जो क्रिएट हो गई है, जिसकी वजह से मजहब के नाम पे हम लोग बिके और मजहब के नाम पे जो काम हो रहा है, इवन जब पाकिस्तान भी बना तो बहुत सी मजहबी जमातें ऐसी थी जो पाकिस्तान को देखना ही नहीं चाहती। This is very unfortunate. Anyways, आइए आपको एक मुलाकात की तरफ लेकर के जाना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया इन तमाम स्पॉन्सर्स का जिनके तवसुत से हम प्रोग्राम पेश करते हैं। जनाब नासिर शाह साहब इस वक्त एक शो लेके आ रहे हैं शहर में, और नासिर शाह साहब ने हमेशा 770 के साथ सपोर्ट भी किया। बिस्मिल्ला करा वाले सिंगर यहां पे, जोजीरी खान कवाल यहां पर मौजूद होंगे, और ये तीन जो टाइकून्स इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, जिसमें एक नासिर शाह साहब है, इनके साथ दो और टाइकून्स शामिल है, क्या कहते हैं, क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वो कौन होता है, वो जो एक फिल्म भी बनी थी डॉन्स, एग्जैक्टली थ्री डॉन्स, वन डॉन इज विद मी एट द मोमेंट, जनाब नासिर शाह साहब। शाह जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम भाजी, क्या हाल है आपके?
अल्लाह का बहुत शुक्र है। शाह साहब 19 तारीख को आपका शो है, जरा उस शो के बारे में बताइए।
जी बिल्कुल, और ऑलमोस्ट आपका लोग 5 दिन रहेंगे सिर्फ, और ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा हॉल जो कहते हैं ना, वेन्यू जो कहते हैं, कोई भी बिजनेस कामयाब करने के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत है, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। हमने क्या किया, हमने इंतजार जरूर किया, एक एक दो दो साल की वेटिंग टाइम है रोज थिएटर की, ब्रैम्पटन रोज थिएटर जो इतना खूबसूरत हॉल है, हमने कोशिश की उसका, क्योंकि ये इतने बड़े फनकार आ रहे हैं पाकिस्तान से, ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान आ रहे हैं वो परफॉर्म करने के लिए, आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपके लिए वो पूरी तैयारी के साथ नई चीजें लेकर आ रहे हैं। आपको अंदाजा ही है भाई, आपने सुना है नदीम अब्बास लूने वाला, वो हर तरह की सिंगिंग आती है उसे, क्योंकि उसका बाप भी बहुत बड़े सिंगर थे अल्लाह दत्ता लूने वाला। तो अब ये जो है नदीम अब्बास लूने वाला उनकी जगह पे बैठे हुए हैं और चला रहे हैं अपने सिस्टम को, और सिंगिंग इस तरह के इस लेवल की करते हैं, आप कोई भी फरमाइश करें फोक के बारे में अगर जानना चाहते हैं सुनना चाहते हैं, या आप सूफी कोई सुनना चाहते हैं बाबा बुल्ले शाह के नाम का या बाबा फरीद के नाम का कोई सुनना चाहते हैं सूफी सॉन्ग, वो भी आपको सुनाएंगे। और इस लेवल की सिंगिंग आती है, आप बॉलीवुड कोई हॉलीवुड सुनना चाहते हैं वो भी आपको सुनाएंगे। इस तरह के इन्होंने गाने गा चुके हैं अपने बहुत सारी मूवीज में, बहुत सारे जो गाने गाए हैं इन्होंने, इनको हमेशा अच्छा रिस्पॉन्स मिला और लोगों ने पूरे वर्ल्ड में इनको लाइक किया। अभी यूके से टूर करके अमेरिका गए हुए हैं, अमेरिका से अब यहां पे आना, इन्होंने 18 को पहुंचना है और ये पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। और आपने पहुंचना अपनी फैमिली के साथ, क्यों, हमने रीजन बड़ी बहुत रीजनेबल बजट टिकट्स रखी हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम $29 इंक्लूड टैक्स, कोई टैक्स चार्ज नहीं कर रहे हम लोग, फिर उसके बाद $59, फिर 79 जो वीआईपी टिकट है वो हमारी सिर्फ और सिर्फ $79 है, और जो वीवीआईपी है वो है $99 में इंक्लूड टैक्स, पार्किंग बिल्कुल फ्री। रोज थिएटर लोगों के जेन में होता है डाउनटाउन जाएंगे तो पार्किंग $20-25 की पार्किंग, ऐसा कुछ नहीं है, पार्किंग फ्री है। आपने संडे, ये दिस कमिंग संडे ठीक 7 बजे पहुंच जाना है और आपको बैठ के मजा आने वाला, जो आपको मजा आएगा ना, ये मैं एक चीज की गारंटी करता हूँ, जिस लेवल के ये सिंगर है आपको मिनिमम एक साल ये शो याद रहेगा, क्योंकि मुझे अंदाजा है, क्योंकि मैंने भी बड़े शोज करवाए हैं और खुद गया हूं बड़े शोज में, और मुझे अंदाजा है किस लेवल का सिंगर होता है वो, जब उसको सुनना कोई छोटे सिंगर को सुनना पड़ जाए तो वो ऐसे होता है जैसे सजा मिल गई है। ये बहुत बड़े नाम है, उस्ताद जोजी अली खान ये भी बहुत बड़ा नाम है, पिछले 400 सालों से इसकी फैमिली में ये क्वाली करते हैं और ये खुद जो है ना इसने बहुत नाम पैदा किया। एक ही गाना मैंने खुद रिलीज किया था इसका 2-1.5 साल पहले, हल्का हल्का सुरूर है, अब वो ओवर 24 मिलियन क्रॉस कर चुका है, मेरी कंपनी शाह एंटरटेनमेंट के नीचे बैनर के नीचे वो गाना हमने रिलीज किया था, वो भी ओवर 24 मिलियन हो गया। तो कहने का मकसद है जो भी ये करते हैं जो भी गाते हैं लोग इनको बहुत पसंद है। कल मैं आपके चैनल पे भी लेकर आऊंगा सारे सिंगर को, ये दो सिंगर जो आ चुके हैं उनको लेकर आऊंगा और नदीम अब्बास को फोन पे लेंगे। तो ये जो है ना ये इस तरह के सिंगर हैं, आप जब सुनेंगे इनको लाइव तो आपको अंदाजा हो जाएगा यार वाकई बहुत मजा आया। अगर आप अच्छा म्यूजिक प्रोग्राम सुनना चाहते हैं तो आपको पहुंचना है रोज थिएटर में। रोज थिएटर आपको पता है ये बिल्कुल ब्रैम्पटन सिटी हॉल के बिल्कुल सामने है, ब्रैम्पटन में ये पड़ता है, आप गूगल पे डालिएगा, आपको बिल्कुल पार्किंग फ्री, टिकट इतनी रीजनेबल हमने रखी है इसी वजह से, और हम मिलकर करवा रहे हैं। मैं आपको पता है शाह एंटरटेनमेंट की तरफ से नासिर शाह और वतन दूर की तरफ से सुखी निजर और रईस फरूकी जो है हमारे साथ थे, तीनों लोग हम मिलकर करवा रहे हैं और कामयाबी इसी वजह से होती है जब आपकी टीम अच्छी होती है। हमारी टीम बड़ी सॉलिड और बड़ी अच्छी टीम है और बड़ी, आपको पता हम सबका बहुत एक्सपीरियंस है, ये बहुत सारी बहुत थोड़ी टिकट्स रह गई, ये बड़ी तेजी से जा रही है, कल एक ही दिन में काफी टिकट्स गई हैं, तो इसका मतलब ये होगा ये सिर्फ 850 की कैपेसिटी है। आपने पहुंचना है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बात है, अगर आप अपनी मर्जी की टिकट लेना चाहते हैं आप जो इनकी वेबसाइट है रोज थिएटर की, तो उनकी वेबसाइट पे जाके आप अपना पिक करें प्राइस और उसके बाद आपको वो एरिया बताएंगे किस एरिया में बैठना चाहते हैं, ऑप्शन आपके पास होगी और आप टिकट बुक करा सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप वो खास है इसको कॉल करें 6477127000 पे कॉल कर सकते हैं और 6477127000। एक बार फिर मैं ये बताना चाहूंगा इससे बड़े सिंगर आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे, क्योंकि बहुत बड़ा नाम सभी का और आपको सुन के मजा आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे पंजाबी लोग वहां पे आ रहे हैं, क्योंकि पंजाबी लोग क्या वो नदीम अब्बास और जोजी अली खान को सुनना चाहते हैं, वो इसी वजह से, क्योंकि नदीम अब्बास भी जो सूफी गाता है और जोजी अली खान भी बड़ा सूफी गा लेता है, तो ये दोनों जो इतना इस लेवल के सूफी गाएंगे फिर बॉलीवुड हॉलीवुड सब टच देंगे। और रागिनी जो है आपको पता है वो ऑलराउंडर है, हर तरह का गाना गाती है, कोई भी नाम ले ले आप, किसी मूवी का नाम ले ले, वो सारे गाने उसने गाए हुए हैं। तो इसलिए आपको हमने हर एज को जेन में रखकर ये शो बनाया था और इसी वजह से हमारे शो सारे के सारे सोल्ड आउट जाते हैं, क्यों, हम हर एज को जेन में रखते हैं। नंबर एक बार फिर 6477127000 7000 کل انشاءاللہ بھائی آپ کے اسٹوڈیو میں ملاقات ہوگی. جی
بہت شکریہ ناصر شاہ صاحب. 19 تاریخ کو یہ پروگرام ہے, روز تھیٹر میں یہ پروگرام ہوگا. ٹکٹس کی بکنگ کے لیے آپ کہاں پہ کانٹیکٹ کریں؟
جی برمپٹن روز تھیٹر کی ویب سائٹ ہے, وہاں پہ کلک کریں گے, وہاں پہ سارا فلور پلان پڑا ہوا ہے, پرائز پڑی ہیں. آپ صرف ویب سائٹ پہ جا کے ٹکٹس آپ ڈالیں گے, شو کا نام اکتوبر 19 کو جو شو ہونے جا رہا ہے عشق صوفیانہ اکتوبر 19 ڈالیں گے تو آپ کو سارے کا سارا فلور پلان یہ وہ سب کچھ نکل آئے گا, تو اس کے مطابق آپ ٹکٹ بائی کر سکتے ہیں. ایک بار پھر اسٹارٹنگ فروم 29, 59, 79 اور وی وی آئی پی جو ہے وہ صرف اور صرف $99 میں آپ کو ٹکٹ ملے گی.
بہت شکریہ شاہ جی, اس آپ تو جو ہونا تھا ہو گیا اور مجھے یقین ہے کہ دے ول ڈیفینیٹلی انجوائے دا شو. اٹس اے ویری گڈ شو جس میں ندیم عباس لونے والا ہے اور جو جی علی خان. تھینک یو. 19 تاریخ کو یہ ہے اور آپ روز تھیٹر کی سائٹ پہ جا کے عشق صوفیانہ کو گوگل کر لیجیے گا. بہت شکریہ شاہ صاحب.
تھینک یو.
ناصر شاہ صاحب سے آپ کی بات چیت کرائی تو اسپانسر.
اب مارگیج کی پریشانی ہوئی ختم کی اسٹون فائنینشل ایکسپرٹ کے ساتھ. کمرشل مارگیج, ریزیڈینشیل مارگیج, پرائیویٹ مارگیج, کنسٹرکشن مارگیج, ری فائنینس, رینیول, سیلف امپلائڈ اور سیکنڈ مارگیج, آل یور مارگیج سولوشنز. کی اسٹون فائنینشل ایکسپرٹ کی جیسمین پرمار سے آج ہی کانٹیکٹ کیجیے. ان کے پاس ہے مارگیج انڈسٹری میں سالوں کا تجربہ اور آپ کی مارگیج کا آسان حل. جیسمین پرمار, پرنسپل بروکر. کال ٹوڈے 6479235659, 6479235659. اسپیک یور لینگویج انگلش, پنجابی اینڈ ہندی. لائسنس نمبر 13654.
چاندنی بینکویٹ ہال,
انٹیلیجنٹ چوائس لوکیشنز, ساؤنڈ سسٹم, انوویشنز. چاندنی بینکویٹ ہال,
30 ایئرز آف ہاسپیٹیلیٹی ایکسپیرینس. کارپوریٹ ایونٹ, ایگزیبیشن, ایکسپو اور اینی سیلیبریشن.
انڈور اینڈ آؤٹ ڈور گولف کورس فیسلٹیز. چاندنی بینکویٹ ہال. فار اپائنٹمنٹ کال ٹوڈے ایٹ 905-458-8888, 905-458-8888
اور وزٹ. Are you looking for the residential or commercial mortgage? سید سعد علی ہر طرح کی ریزیڈینشیل اور کمرشل مارگیج کے لیے اعتماد کی ضمانت. کینیڈا کے ٹاپ بینک لینڈر سے کم از کم انٹرسٹ ریٹ پر آپ کو مارگیج لے کر دیں گے. آر یو سیلف امپلائڈ اور نیو کمر, فرسٹ ٹائم ہوم بائر؟ از دس اباؤٹ دا رینیول, ری فائنینسنگ, ڈیٹ کنسالیڈیشن, مارگیج فار دا ملٹیپل رینٹل یونٹ, کنسٹرکشن لون یا پھر ہوم ایکویٹی, لائن آف کریڈٹ؟ ون سولوشن فار آل یور مارگیجز. سید سعد علی.
میں سید سعد علی فرام ڈومینین لینڈنگ سینٹر. 19 سال کا مارگیج کا ایکسپیرینس, آپ کی ہر قسم کی مارگیج کا حل. پلیز کال 6477947000.
کچھ حلال پاکستانی فوڈ کھانا ہے ایسا جو دل کو لگے.
ارے مزیدار کڑاہی, بریانی, سیخ کباب, چکن رول, بٹر چکن, کڈز مینیو, بہت کچھ. ٹیک آؤٹ, ڈائننگ یا پھر کوئی اسپیشل ایونٹ, ہر چیز پاسبل. اور ہاں, کڑائی پوائنٹ کی سگنیچر ڈشز ٹرائی کرنا مت بھولنا.
میرے منہ میں تو ابھی سے پانی آ گیا ہے.
تو پھر جائیے 285 سینٹینیل پارک وے, اسٹونی کریک, ہیملٹن. 905-664-9988. یاد رکھنا 905-664-9988.
کڑائی پوائنٹ, اسٹونی کریک,
جہاں ہر میل ایک سیلیبریشن ہے.
تیار ہو جاؤ, سب سے زیادہ انتظار کرنے والی فیملی انٹرٹینمنٹ نائٹ انعام گھر کینیڈا 31 اکتوبر کو, جس میں شامل ہیں مزیدار ڈنر, دلچسپ گیم.
31 اکتوبر کو یہ پروگرام ہوگا اور آپ رابطہ کر لیجئے گا انعام گھر کی ٹیم سے, بہت سارے انعامات ہوں گے. آئیے صاحب, لے کر کے چلتی ہوں آپ کو اس طرف جس طرف ملاقات کا مجھے پتا آپ تمام کو انتظار ہے. شکریہ ہمارے اسپانسرز کا, چاندنی بینکوٹ ہال. اگر آپ نے کوئی فنکشن کرنا ہے شادی بیاہ کا, دیئر ملٹیپل ہالز, آؤٹ ڈور فنکشنز بھی کر سکتے ہیں, انڈور بھی کر سکتے ہیں. دا بگیسٹ ہال از چاندنی وکٹوریا, دیٹ از ان مالٹن ڈریو روڈ کے اوپر. اور چاندنی وکٹوریا ہمارے پروگرام کو ویلج ٹیسٹ نے بھی تعاون دیا. اگر بہترین لذیذ ذائقے دار اگر آپ کھانا کھانا چاہتے ہیں تو ویلج ٹیسٹ بہترین کھانے کے لیے اپنا نام اور اپنی مثال. آپ چھوٹے بڑے فنکشنز بھی کر سکتے ہیں, بیوٹیفل ہالز ہیں ان کے. اور ویلج ٹیسٹ کا نمبر 9052323663, 232-3663 ان کا نمبر ہے. بہت شکریہ تمام سپانسرز کا جنہوں نے ہم کو تعاون دیا. آئی ڈونٹ ہیو ورڈز. ظاہر ہے آج کل وقت کا مقابلہ سخت چلتا چلا آ رہا ہے. جناب کرامۃ اللہ غوری صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہے, امبیسڈر ہیں, اور جیسا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا آج کے پروگرام میں, انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی ملاقات ایک اور امبیسڈر سے بھی کرائیں گے. بفور اس کے کہ میں امبیسڈر صاحب کی طرف لے کے چلوں, ایک میرے ساتھ آپ کا کمٹمنٹ تھی کہ صاحب جنریشن زی کیا کمال کی جنریشن ہے. آپ امیجن کیجئے گا اب یہ جنریشن زی, مجھے پتا ہے کہ آپ تمام لوگوں کو علم ہے کہ جنریشن زی یہ 2000 سے بعد پیدا ہونے والے بچے ہیں, اور جنہوں نے اپنے بلبوتے کے اوپر تبدیلی لے کے آئے ایک ملک میں نہیں بہت سارے ممالک میں. جنریشن زی, اس کو جنریشن زیڈ کے نام سے بھی لکھا جا سکتا ہے, اور یعنی ملینیئرز ان کو کہتے ہیں, ملینیم کے بچے ہیں, اور جنریشن الفا سے یہ پہلے پیدا ہوئے ہیں 2000 کے بعد, الفا 2001-2002 کے بعد. یہ نسل ڈیجیٹل دور میں پلی بڑی ہے اور ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا سے گہری واقفیت ہے, اور ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کے سر کے اوپر ہی. ناؤ جنریشن زی براٹ اندر چینج. میڈغاسکر میں آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ انہوں نے جس طرح سے جنریشن زی کی بغاوت سے ایک اور حکومت کا تختہ الٹ گیا, میڈغاسکر کے صدر ملک چھوڑ کر فرار ہو گئے. مشرق افریقہ کے ملک میڈغاسکر کے حزب اختلاف کے رہنما اور دیگر عہدیداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر اینڈری راجویلینا ملک چھوڑ کر فرار ہو گئے. دنیا بھر میں جنریشن جی یعنی نوجوانوں کی قیادت کی بغاوتوں کے نتیجے میں چند ہفتوں کے اندر گرنے والی دوسری حکومت ہے. ایک تو وہ ہمارے علاقے میں یہ حکومت گری تھی. رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق حزب اختلاف کے سربراہ انہوں نے بتایا کہ صدر اینڈری جو ہیں اتوار کو ملک چھوڑ کر فرار ہوئے, جو فوج کے کئی یونٹس نے بغاوت کرتے ہوئے مظاہرین کا ساتھ دینا شروع کر دیا. ہم نے صدارتی عملے سے رابطہ کیا, انہوں نے تصدیق کی کہ صدر ملک چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں. پیر کی شب فیس بک پر قوم سے اپنے خطاب میں صدر نے کہا تھا کہ انہیں اپنی جان کی حفاظت کے لیے کسی محفوظ مقام پر منتقل ہونا پڑے گا, گو کہ انہوں نے مقام کا اظہار نہیں کیا تھا. صدر فرانسیسی فوجی طیارے پر فرار ہوئے. میڈغاسکر افریقہ کے صدر ہیں اور فرانس کے طیارے پر یہ فرار ہوتے ہیں. رائٹرز کو بتایا گیا کہ یہ صدر جو میڈغاسکر کے ہیں اتوار کو فرانسیسی فوجی طیارے میں سوار ہو کر میڈغاسکر سے فرار ہوئے. فرانسیسی ریڈیو نے بتایا کہ انہوں نے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا. مصر میں غزہ جنگ بندی کی کانفرنس کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں میکرون نے کہا کہ وہ فی الحال اس کی تصدیق نہیں کر سکتے کہ فرانس نے فرار ہونے میں مدد دی, اپنا طیارہ فراہم کیا کہ نہیں کیا. تاہم انہوں نے زور دیا کہ میڈغاسکر میں آئینی نظام برقرار رہنا چاہیے, اگرچہ فرانس نوجوانوں کے مطالبات کو سمجھتا ہے لیکن انہیں فوجی دھڑوں کے ذریعے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے. فوجی ذریعے کے مطابق فرانسیسی فوج کا ایک کاسا طیارہ اتوار کو سینٹ میری ہوائی اڈے پر اترا, اور 5 منٹ کے بعد ایک ہیلی کاپٹر ایک مسافر کو طیارے میں منتقل کیا, اور یہ مسافر میڈغاسکر کے صدر تھے. سو جنریشن زی کا دوسرا کمال, ود ان ویکس آئی ہیو اے ونڈرفل گیسٹ آف مائنڈ, دیٹ از ہمارے امبیسڈر رہے ہیں جناب کرامۃ اللہ غوری صاحب. سر آپ کو خوش آمدید, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عارفہ بی بی, میرا تعلق تو جنریشن زیڈ سے نہیں ہے, میں تو بہت پرانی نسل سے ہوں, لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہمارے آس پڑوس میں, پاکستان کے آس پڑوس میں یہ جو جنریشن زیڈ ہے وہ اپنا کام دکھا چکی ہے, لیکن پاکستان کی جنریشن زیڈ ہے کہ وہ اب تک اے پر کھڑی ہوئی ہے, وہ ہل کے نہیں دیتی. وہ مجھے تو یاد آ جاتا ہے, وہ آ جاتی ہے وہ کہاوت کہ زمین جنبد نہ جنبد گل محمد. تو پاکستان کی جنریشن زیڈ یا زی کب جاگے گی, یہ بڑا یہ لمحہ فکریہ ہے میری نسل کے لیے, اس لیے کہ ہم لوگ تو اب بوڑھے ہو چکے ہیں. ہماری تمام تر امیدیں اپنی اس نئی نسل سے وابستہ ہیں, لیکن وہ نئی نسل ہے کہ بیدار ہو کے نہیں دیتی.
مجھے نا آپ جب یہ بات کر رہے ہیں نا, دونوں لائٹر موڈ, मुझे याद आते हैं, हम तो पढ़ाकू बच्चे हुआ करते थे, साइंस के स्टूडेंट हुआ करते होते थे उस जमाने में। अभी ये जियाउल हक का दौर नहीं आया था और जो स्टूडेंट यूनियंस थी वो खत्म नहीं हुई थी, तो वो जो जोश दिलाने वाले होते थे ना, जैसे बाप कह रहे जी उठी नहीं, तो वो हम बेचारे भी देखने के, तमाशा देखने के चक्कर में आगे चले। मुझे एक दफा का याद आता है, और तौबा अस्तगफार, एक ही दफा ये गलती की थी, दोबारा कभी नहीं की जी। हम भी उनके नारों के पीछे लग के चल गए, हम तो देखने के लिए, तमाशा देखने के लिए गए थे। उसके बाद जब पुलिस आई और गोली बोली चली, तो आप यकीन कीजिएगा वो जो कॉल देने वाले थे वो तो सारे गायब हो गए थे। आपने भी यूनियन देखी होंगी, स्टूडेंट यूनियंस देखी होंगी, वो सारे गायब हो गए थे। वो बेचारे जो पढ़ाकू बच्चे तमाशा देखने वाले थे, उनको फैटी लग गई। मुझे याद है गोली चल गई, हमारे साथ एक हमारी क्लासमेट हुआ करती होती थी, तो वो गिर गई। अब उसको कहे उठो भागना है, तो वो कहे मुझे गोली लग गई है, मैं उठू कैसे। तो सर मेरा ख्याल है पाकिस्तान बेचारा तो पहले ही बड़े इंतजार का शिकार है, बड़े इंतजार का शिकार है। अल्लाह करे कि एमिकेबली चीजें हल हो। आई डाउट इट वेरी मच कि गोली चलना और ये चीजें हल हैं। ये जग हसाई ज्यादा है,
ये भी इंतजार खुद पैदा करता है।
नहीं
मगर खुद का पैदा करता है, इसलिए वो जो मैं जेनरेशन जेड की, पाकिस्तान की जेनरेशन जेड की बात कर रहा था, वो मैं लाइटर नोट पे नहीं कर रहा था। मुझे अफसोस है कि पाकिस्तान की नई नस्ल बेदार होके नहीं देती, वो उस तरह के बेदारी कुव्वत का मुजाहरा नहीं करती जिसका मुजाहरा बांग्लादेश के नौजवानों ने किया, नेपाल के नौजवानों ने किया, और जो अब तो अभी जो तुम कहानी बयान कर रही थी मडगास्कर के नौजवानों ने दिया। और पाकिस्तान में ये क्यों हुआ, देखो मैं मेरे जमाने में, मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था उस वक्त तक स्टूडेंट्स यूनियन फाल थी, बल्कि पाकिस्तान में मशहूर था कि जो तहरीक, जो सियासी तहरीक कराची से शुरू होती थी वो कामयाब हो जाती। उसके बाद हमारे जो पहले अस्करी ताले आजमा थे जनरल अय्यूब खान, उन्होंने स्टूडेंट यूनियन पर पाबंदी लगा दी और आज तक वो पाबंदी बरकरार है।
तो नहीं सर, उन्होंने नहीं, हमारे जमाने में, मैं उस जमाने की स्टूडेंट नहीं जिस जमाने की आप बात कर रहे हैं, 77 में यूनियंस थी, बिल्कुल यूनियंस थी। ये जियाउल हक के दौर के आखिर में आया था जिसमें ब्लॉक हुआ था,
पहली पाबंदी अय्यूब खान ने लगाई थी, उसके बाद जियाउल हक ने अपने दौर में उसको उस पाबंदी को ताजा किया, और उसके बाद से पाकिस्तान के नौजवानों, और ये बाकायदा मनसूबे के तहत किया गया है कि पाकिस्तान की नई नस्ल में, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल में सियासी शऊर बेदार न होने पाए, इसलिए कि सियासी शऊर की पहली जो सीढ़ी है वो तो कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज की स्टूडेंट्स यूनियन ही हुआ करती थी। मुझे याद है 1960 में मैं जब बीएससी कर रहा था तो जबलपुर में फसादात हुए थे हिंदुस्तान में।
सर पुरानी बातों को छोड़ें, हम आज की बात को करते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि पाकिस्तान में मजहबी इंतहा पसंदी अपने अरूज के ऊपर है। आप देखिए कि जितने आपके मजहबी लीडर्स हैं, अभी बात कर रहे थे 14-14, 15-15 करोड़ की गाड़ियां चला रहे हैं, वो कहते हैं हम रहते तो 5 मरले के घर में है, लोग अपना जेवर तक उतार के दे देते हैं। जुनूनियत सर पे सवार है मुल्क में, अंदरूनी और बैरूनी खतरात हैं।
इंतहा पसंदी को फरोग देने वाले कौन है
सर? ये तो पाकिस्तान बना, जब पाकिस्तान भी बना
नहीं,
था
नहीं,
ना
इमरान खान के दौर हुकूमत से पहले, जब इसी तहरीक लब्बैक के पाकिस्तान ने इस्लामाबाद का घेराव किया था, तो वो तो रिकॉर्ड है कि उनको पैसे देने वाले आईएसआई के अफसरान थे।
ठीक, मगर सर जब पाकिस्तान बना था तो मजहबी जमातों ने ही पाकिस्तान बनने की मुखालफत भी की थी,
लेकिन मजहबी बहुत से मजहबी रहनुमा थे जिन्होंने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की थी।
ठीक, बहुत शुक्रिया। और अभी सवाल एक बड़ा अजीब सा आया है, फोर साहब कुछ भी नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। 9977, कैन यू टेल मी वेयर खालिद मीर्स किड्स, डेफिनेटली टेल यू लेटर ऑन। सर मुझे इस वक्त बताइएगा कि आज पाकिस्तान जाहिर है पहले हमें सिर्फ ईस्टर्न बॉर्डर से कंसर्न था, नाउ वी आर इंटरनल पाकिस्तान में प्रॉब्लम तहरीक लब्बैक के साथ भी है और हमारा वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर भी इस वक्त हमले जारी हैं। हिंदुस्तान के लोग बड़े मुहिब वतन लोग हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहती हूं, और हिंदुस्तान हालांकि पसपाई के बाद अफगानिस्तान से निकला मगर आज अफगानिस्तान ने प्रेफर किया कि और अमेरिका ने पाकिस्तान में उसी वजीर खारजा के आने पे पाबंदी लगाई मगर इंडिया पे पाबंदी नहीं लगाई, इसको आप कैसे एलेबोरेट करेंगे? बिकॉज तीसरी ताकतें हमको इस्तेमाल करते हुए किस नहज के ऊपर लेके जा रही है?
देखो हमारी अस्करी कयादत और सियासी कयादत की अकल पर मुझे मातम करने को दिल चाहता है, इनकी अकल पे पर्दे पड़ गए हैं कि हम ये कहा करते थे, हमारे अस्करी कायदीन ये कहा करते थे कि अफगानिस्तान तो हमारे लिए जाए पना है, हमारे लिए स्ट्रेटेजिक फॉल बैक पोजिशन है, इसलिए कि हिंदुस्तान से हमारी अजली दुश्मनी है और खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा मौका आ जाए कि हिंदुस्तान के हमले के बाद हमें पस्पा होना पड़े तो हम अफगानिस्तान में जो हमारे लिए पिछवाड़ा है, हमारा आंगन है, हमारा बैकयार्ड है, हम वहां जाकर फिर अपनी कुव्वत को मुश्तमा कर सकते हैं, रीग्रुप हो सकते हैं और वहां से पलटकर हम अपने दुश्मन पर वार कर सकते हैं। अब ये हुआ है इस अस्करी कयादत के हाथों कि हमने उस पिछवाड़े से लड़ाई शुरू कर दी है, जंग मोल ले ली है, हमने तो अपने आप को अपना असीर खुद बना लिया है और अफगानिस्तान की क़यादत की दाद देनी पड़ती है कि वो उन्होंने ऐसे वक्त में हमारे दुश्मन के साथ पींगे बढ़ाने की तदबीर की और उस दुश्मन ने अफगानिस्तान के वजीर खारजा को खुश आमदेद कहा, उनकी पजीराई की और यहां तक हुआ कि वो उनको दारुल उलूम देवबंद ले गए। दारुल उलूम देवबंद जो अभी तुम बात कर रही थी ना कि पाकिस्तान की तहरीक की मुखालफत का जो गढ़ था वो दारुल उलूम देवबंद था। दारुल उलूम देवबंद की कयादत तो पाकिस्तान के नजरिए के खिलाफ थी, पाकिस्तान की तहरीक के खिलाफ थी, तो इससे क्या अंदाजा होता है तुम्हें कि अब वो दारुल उलूम देवबंद को वो मरकज बनाना चाहते हैं और मुत्तकी ने कहा, मुल्ला मुत्तकी ने जो अफगानिस्तान के वजीर खारजा हैं उन्होंने कहा कि हमारा देवबंद के साथ अब रूहानी और दीनी रवाबित उस्तवार होंगे और हम हमारे तुलबा यहां आकर दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं।
कोई बात नहीं, उसकी कीमत भी चुका लेंगे।
आज तक सुन लो मेरी बात, आज तक तालिबान के लिए जो दीनी तदरीस का और दर्स का मरकज था वो था अकोड़ा खटक में जो हक्कानी मदरसा है और हक्कानी मदरसा बनाने वाले
तो पाकिस्तान तो कीमत चुका रहा है, अब इंडिया भी चुकाएगा, फिर ले जाए देवबंद। मैं तो कहती हूँ अल्लाह करे सारे जो बन जाओ,
इन हिंदुस्तान कीमत नहीं चुकाएगा,
चुकाएगा
पाकिस्तान चुकाएगा।
फैनेटिक्स पैदा होंगे सर, वहाँ भी फैनेटिक्स,
तो वहाँ तो फैनेटिक्स पैदा हो चुके हैं। बीजेपी तो क्या समझती हो?
इतना मेरा ख्याल है कि हमको पाकिस्तान को भी इतना, यस पाकिस्तान ने कीमत चुकाई मदरसे और ये चीजें बनाने के बाद। आज आप इमेजिन कीजिएगा कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जब आपने आना है तो यू हैव टू हैव, आपकी अच्छी तालीम होनी चाहिए ताकि इंटरनेशनल स्केल के ऊपर आप आगे बात कर सकें। ये जो मदरसे और ये जो ये लोग हैं जो बंद के ऊपर भी जाने दें, आप देखिएगा एवरीबडी विल पे द प्राइस, एवरीबडी। इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया के लोगों को मैं डेफिनेटली अप्रिशिएट करती हूँ, अपने मुल्क के लिए बड़ा जज्बा रखते हैं। ऑनेस्ट टू गॉड मेरा, मुझे पता है आपका भी दिल जलता होगा इस वक्त जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, मगर उसमें مذہبی جنونیت. آپ امیجن کیجئے گا یہ مذہبی جنونیت کی انتہا ہے کہ مذہبی شخصیات جو ہیں وہ بچیوں کو بھی پڑھاتے ہیں, ان کو رولتے بھی ہیں, اور پھر بھی ان کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. چار دن بعد پھر لوگ اپنی بچیاں لے کے ان کے پاس چلے جاتے ہیں.
بی بی بالکل درست کہہ رہی ہو تم, لیکن میں میرا استدلال تو یہ ہے,
مجھے
میرا تو یہ
کا نام ہو جاتا ہے. آپ کو نام وہ یاد ہوگا, وہ کیا تھا وہ ٹوپی والا آدمی جسے کہتا میں نے روزہ نہیں رکھا.
وہ ان کو پروان چڑھانے والے کون ہیں؟ ان کو ہماری عسکری قیادت نے پروان چڑھایا, اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو سیکولر جماعتیں ہیں, یہ سلسلہ شروع ہوا خاص طور پہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد. اس کے بعد ایک تو سندھ میں کراچی میں ایم کیو ایم بنائی گئی, وہ اس کے بنانے والے آئی ایس آئی کے لوگ تھے, اس لیے کہ وہ سندھ میں جو نفرت کے شعلے بلند ہو رہے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ ان کو بجھانے کے لیے اردو بولنے والے کراچی کے مہاجرین کو پیپلز پارٹی کے خلاف لا کھڑا کیا جائے, اور اس طرح سے وہ تو وہ جو کلونیل پالیسی تھی نا, ڈیوائیڈ اینڈ رول, تقسیم کرو اور حکومت کرو, اس پر آج تک چلتے رہے ہیں. ہماری عسکری قیادت آج بھی اسی فارمولے کو اپنائے ہوئے ہے کہ قوم کو تقسیم کرو اور حکومت کرتے رہو.
بہت شکریہ آپ کا. مجھے بتائیے گا کہ مڈل ایسٹ کا معاملہ غزہ کے حوالے سے, یورپین یونین بھی خائف ہے جو غزہ کی ریسپانسبلٹی ڈونلڈ ٹرمپ لے رہے ہیں کہ بھئی امریکہ اس کو ٹھیک کرے گا. واٹ ڈو یو تھنک بنجامن نتن یاہو, اگر تو یہ جنگ بندی ہر طرف سے ہو جاتی ہے تو بنجامن نتن یاہو کی آگے زندگی کوئی اتنی آسان نہیں ہے, بیکاز ان کو آلریڈی بہت سارے چارجز ان کے اوپر ہیں اور ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے. اینڈ آئی بلیو سو فار دیٹ دس جنگ ول نیور اینڈ, کیونکہ اگر غزہ کا معاملہ حل ہوا, غزہ میں آج بھی فوڈ سپلائی نہیں ہو رہی, اور غزہ کے بعد انہوں نے اردن کے اوپر حملہ کر دیا.
آج بھی جو تازہ ترین پیش رفت ہے اس میں اسرائیل نے باقاعدہ ایک خط لکھا ہے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو, اور میں آج سن رہا تھا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے جو نائب ترجمان ہیں, اسپوکس مین ہیں, وہ بنگلہ دیش کے میں جانتا ہوں, فرحان کو, انہوں نے وہ خط پڑھ کے سنایا. اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم جو منصوبے میں طے ہوا تھا کہ 600 ٹرک امدادی سامان کے روز غزہ میں جانے دیے جائیں گے, اس کو تعداد کو گھٹا کر 300 ٹرک کر دیا گیا ہے, اور اسرائیل نے جواز یہ پیش کیا ہے کہ حماس نے مرے ہوئے یرغمالیوں کی لاشیں اب تک پوری تعداد میں نہیں
دے دی, آج چار آخری تھیں وہ آ گئی,
چار بھیجی ہیں, لیکن اسرائیل کا کہنا ہے کہ اور بھی لوگ ہیں, اور بھی مردہ یا رقمالی ہیں جن کے لاشیں اب تک واپس نہیں کی گئی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس تو ہتھیار ہے, اسرائیل کے پاس وہ کارڈ ہے جو ٹرمپ نے اس کے ہاتھ میں تھما دیا ہے کہ وہ کسی بھی جواز سے اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ ذمہ داریوں سے انکار کر سکتا ہے, ان کو ذمہ داریوں کو پورا کرنے سے اپنا دامن چھڑا سکتا ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اسرائیل نے نہ صرف یہ کہ ٹرکوں امدادی ٹرکوں کی تعداد آدھی کر دی ہے, بلکہ یہ کہا ہے خاص طور پہ کہ تیل اور گیس بالکل نہیں بھیجی جائے گی سوا وہ جو کمیونٹی اسٹریٹیجک کمیونٹی کے ادارے ہیں, یعنی بجلی چلانے والے یا پانی صاف کرنے والے اداروں کو تو ضرور گیس فراہم کی جائے گی, لیکن اس کے علاوہ اسپتالوں کو اور بیکریوں کو تیل اور گیس بالکل نہیں فراہم کی جائے گی. تو خلاف ورزی تو شروع ہو چکی ہے, اور ٹرمپ और ट्रंप और नेतन्याहू ने आपस में जो मिलके खिचड़ी पकाई है उसने 57 इस्लामी ममालिक को एक तरह से बेवकूफ बना दिया।
सर एक न दो 57 वर्सेज एक, इट डजंट मेक सेंस टू मी।
तो ये तो
फिर आप सुन लो
उम्मते मुस्लिमा की के जवाल की ये अलामत है।
तो बस ये फिर आने दे जवाल। उसकी वजह ये है कि आप एक अमेरिका स्टीव विटकॉफ, क्योंकि अब इन्होंने लिंक कर दिया है इसको बाइबल के साथ। बाइबल में जो इनके एक एम्बेसडर हैं इन इसराइल, उन्होंने भी बाइबल से इसको लिंक किया है। अमेरिका में भी जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है कि हमने यहूदियों के साथ देना है और जो उनकी प्रॉमिस्ड लैंड है वो उनको लेकर के देनी है और जो उनको सपोर्ट करेगा वो कामयाब होगा, जो नहीं सपोर्ट। एनीवेज, पाकिस्तान ये 57 मुल्क ने मुआहदा दस्तखत कर दिया, 7 मुल्कों ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की ओवल ऑफिस में जाके, जिसमें पाकिस्तान वॉज वन। ठीक, द मेन कंट्रीज सराउंडिंग कंट्रीज ऑफ जो कि इमीडिएट इफेक्ट किए हुए हैं, सऊदी अरेबिया इज द मेन कंट्री। ठीक, क्या वजह है कि पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक जो है अब इसके ऊपर मुजाहरा कर रही है कि फलस्तीन को मंजूर है कि अमन आ जाए, हमारे बच्चे मरने से बच जाए, इनको क्या प्रॉब्लम है कि इन्होंने अपने मुल्क में फसाद खड़ा कर लिया है। यानी खुद आपके पास फॉरेन कंट्रीज की करेंसीज भी हैं। आपने, आपको याद होगा एक जमाने में फ्रांस के साथ झगड़ा हुआ था वो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की स्केचेस के हवाले से, तो जी इन्होंने कहा जी एम्बेसडर को वापस कर लो। यानी जितने ये तहरीक लब्बैक वाले ही थे, आज भी ये यही कर रहे हैं कि आपने अपने मुल्क में तोड़ फोड़ करके अपने मुल्क में इंतजार पैदा कर दिया है। वो जो अरब कंट्री, सराउंडिंग अरब कंट्रीज है, अगर उनको कबूल है तो आप तो अपने घर के मसले हल नहीं कर सकते, तो ये नया मसला कहां से खड़ा करके बैठ गए हो तुम?
नहीं तो यही तो मैं कहता हूं, अफसोस का मकाम है बीबी के इन रुझत पसंद मजहबी तंजीमों की सरकारी सतह पर सरपरस्ती होती रही है और उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है, मुल्क को भुगतना पड़ रहा है, कौम को भुगतना पड़ रहा है।
लोगों को अकल नहीं है कि मजहब के नाम के ऊपर लोगों को जो लीडर्स हैं वो बेवकूफ बना रहे हैं, क्या उसका लोगों को एहसास
नहीं? पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला तो जहालत है।
थैंक यू वेरी मच।
जहालत और मजहब की गलत ताबीला।
ठीक से क्या फरमाएंगे मेरे जैसे बंदे को, क्या कहेंगे? जिंदगी इज टू शॉर्ट टू लिव। हम इंसानियत को लेके, मैं तो ये कहती हूं कि अगर बड़े सगीर पाको हिंद की ही बात की जाए बजाय इसके कि मैं इंडिया के साथ भी अपनी नफरतों को, एक आदमी गलती कर रहा है या एक मुल्क में अगर ये फनाटिज्म है हिंदुइज्म का, हमारे में मुस्लिमिज्म का जो तहरीक लब्बैक कर रही है, ठीक ये खत्म होना चाहिए। और अगर ये खित्ते के तमाम ममालिक मिल जाएं, विच इज मेरी आवाज तो नकारखाने में तूती की आवाज वाली बात है, तो आई थिंक कि ये एरिया इतना स्ट्रांग होगा हमारा जो सेंट्रल क्या बरे सगीर पाको हिंद जाहिर दुनिया की सेकेंड वर्ल्ड पावर, चाइना वहां है, रशिया वहां पे है, मिनरल्स के लिए अल्लाह ताला ने बड़े जखायर दिए हैं, नॉर्थ पोल का हिस्सा इनके बीच में आ रहा है। तो आपको पता है कि वेस्ट ने और यूरोप ने हमेशा पॉलिसी प्ले की है, दिस इज ऑल द पॉलिसी। अगेन इट कैन बी माय कॉन्स्पिरेसी फ्रॉम माय साइड एज वेल कि भाई चैन से ना बैठो, आपस में तोड़ फोड़ लगाई रखो।
नहीं तो इसराइल को कायम किस लिए किया गया? इसीलिए कि अरब दुनिया के सीने में एक मुसलसल खंजर भोंका रहना चाहिए। इसीलिए इसी तरह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो दुश्मनियां पैदा हो गई हैं, जो दुश्मनियां बढ़ते बढ़ते अब ये सूरत हाल है कि हिंदुस्तान में जिसको अपने सेक्युलरिज्म पर फख्र था और दुनिया उसके सेक्युलरिज्म की दाद देती थी, आज हिंदुस्तान पर एक मजहबी इंतहा पसंद जमात काबिज है और काबिज यूं है कि आवाम की ताईद उसे हासिल है। तो ये तो जो तुम बात कर रही हो बेबी वो आइडियल है, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है, जमीनी हकायक हैं, वो इसके हक में नहीं है। कोई 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 खुश आइंद अलामत हमें ऐसी नजर नहीं आती कि जनूबी एशिया के ये तमाम ममालिक एक सतह पर जमा हो जाए। सार्क, सार्क का क्या हशर हुआ?
बहुत बुरा हशर हुआ।
आज तक
इंडिया नहीं आता,
10 बरस हो गए हैं, सार्क की कोई सरबराही इजलास नहीं हो सका, इसलिए कि हिंदुस्तान जो सबसे बड़ा मुल्क है, जो सबसे बड़ा रुकन मुल्क है सार्क का, वो इसके हक में नहीं है। वो एक मेज पर पाकिस्तान के साथ नहीं बैठना चाहता। तुमने देख लिया कि क्रिकेट के मैदान में क्या हुआ।
मगर लोग तो बहुत मोहब्बत करते हैं आपस में, पॉलिटिशियंस आर प्लेइंग अराउंड द पीपल।
लोग मोहब्बत करते हैं, ठीक है, अवामी सतह पर एक दूसरे के लिए खैर सगाली का जज्बा है, लेकिन मैं फिर ये कहता हूं कि अक्सरियत जब अपना एतबार और एतमाद एक मजहबी इंतहा पसंद जमात को दे दे, तो ये कहना भी मेरे ख्याल से गलत होगा कि अवामी सतह पर खैर सगाली के जज्बात हैं और अवाम ये चाहते हैं कि मुफाहमत पैदा हो। अगर अवाम की अक्सरियत ये चाहती होती कि मुफाहमत पैदा हो, तो वो इंतहा पसंद जुनूनी मजहबी जमातों की ताईद ना करते, उन्हें अपना वोट ना देते। पाकिस्तान के अवाम ने तो 2024 के इंतखाबात में ये साबित कर दिया था कि वो मजहबी जमातों के हक में नहीं है। और देखो ये भी पाकिस्तान की तारीख है कि आज तक कोई मजहबी जमात बरसरे इख्तदार आने नहीं पाई। पाकिस्तान में मजहबी जुनून बे इंतहा है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम में, पाकिस्तान के जमहूर में ये कम से कम ये सियासी शऊर जरूर बेदार है कि वो मजहबी जमातों को अपनी क़यादत के लिए
मुंतखब नहीं करते। बहुत शुक्रिया जनाब करामतुल्लाह। और इसका कोई कता अगर आज के लिहाज से आपका है तो प्लीज शेयर करें।
हाँ, आज का कता तो वही है, वो जो हमने अपने पड़ोसी अफगानिस्तान से जंग मोल ली है, तो उसी के पस मंजर में मैंने कहा है कि पड़ोसियों से लड़ाई बदेसियों से लगन, पड़ोसियों से लड़ाई बदेसियों से लगन, क्यों अपने तौरे गुलामी में हो रहे हो मगन, क्यों अपने तौरे गुलामी में हो रहे हो मगन, हयात का ये वतीरा है गैर फितरी सुनो, हयात का ये वतीरा है गैर फितरी सुनो, ये खार पहलू में पैदा करेगा जल्द चुभन। तो हमें अब ये अंदाजा नहीं है कि हमने क्या खतरात मोल ले लिए हैं अफगानिस्तान से लड़ाई।
बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला बेहतर करेगा करामतुल्लाह गौरी साहब से। आउट ऑफ टाइम, थैंक यू वेरी मच।
दुआ करती रहो, लेकिन
अल्लाह बेहतर करेगा। बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। चंद एक स्पॉन्सर्स विल कम बैक, स्टे ट्यून्ड प्लीज।
मटके दी कुल्फी जो खावे रह जे दंग।
क्यों आ गया ना मुझ पानी, ता फिर तुसी भी बनाओ अपनिया खुशियां स्वीट महल दे नाल, जो तुहाडे स्वाद अते सेहत दोवां दा ख्याल रखदे ने।
मुंह मिठा करां दे चन्न वे के खुशियां ने आईयां, के खुशियां ने आईयां, लेना लगियां स्वीट महल ते खरीद लो मिठाइयां, खरीद लो मिठाइयां।
इस दिवाली थोड़ा खाओ पर वधिया खाओ, मिठाइयां दे नाल ना ड्राई फ्रूट्स से गिफ्ट बॉक्सेस ले जाना ना भूलियो। आज ही पहुंचो स्वीट महल इन रेक्सडेल, 416-679-9191।
हैप्पी दिवाली।
ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਟਰੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਚੇਤੇ ਆਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਟਰੱਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ। ਲਓ ਜੀ, ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲਤੀ ਆ, ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਆਹੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ, ਦ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ। 519-622-0660 ਜਾਂ quicktrucklube.com। QTL, ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਕੇਅਰ।
ट्रक ड्राइवर भाइयों, अब US और कनाडा में अनलिमिटेड डाटा, वीवो टेलीकम्युनिकेशंस के साथ फुल स्पीड, नो रुकावट। सफर बिजनेस का हो या शौक का, वर्ल्ड वाइड ईसिम डाटा प्लान के साथ इंटरनेट हमेशा रेडी। ट्रैवल कर रहे हो इंडिया, पाकिस्तान या हज या उमरे के लिए, वीवो टेल के साथ हमेशा रहो ऑनलाइन। दूर दराज इलाका कोई प्रॉब्लम नहीं, घर हो या केबिन, वीवो टेल की हाई स्पीड इंटरनेट चलती है दुनिया के किसी भी कोने में। विजिट करें vivotel.com या कॉल करें 416-243-9836, 416-243-9836। कनेक्शन आपका दुनिया के साथ।
ਲਓ ਜੀ, ਆ ਗਿਆ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰੇ GTA ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਡੋਰ ਮਠਿਆਈ ਮੇਲਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਮੋਸਾ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਮੇਡ ਸ਼ੁੱਧ ਖੋਏ ਦੀਆਂ ਫਰੈਸ਼ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਮਠਿਆਈਆਂ, ਗਿਫਟ ਬਾਸਕਿਟਸ, ਸਮੋਸਾਸ, ਬਰਫੀ, ਪਟਾਕੇ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਡਰ ਵਨ ਰੂਫ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਡੋਰ ਮਠਿਆਈ ਮੇਲਾ ਓਨਲੀ ਐਟ ਸਮੋਸਾ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ, 1850 ਐਲਬਿਨ ਰੋਡ ਇਨ ਓਟੋਬੀਕੋ। ਕਾਲ ਐਟ 416-213-1165।
ਪੇਠਾ ਲੱਡੂ, ਬਰਫੀ, ਜਲੇਬੀ, ਕਲਾਕੰਦ, ਮਟਕੇ ਦੀ ਕੁਲਫੀ, ਜੋ ਖਾਵੇ ਰਹਿ ਜੇ ਦੰਗ।
ਕਿਉਂ?